ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने आत्मविचार कर अपना चित्त अल्प भी निग्रह किया है वह संपूर्ण फल को प्राप्त होगा और उसी का जन्म सफल होगा। हे रामचंद्र जी, जिस चित्त में विचार रूपी कर्ण का उदय हुआ है वह अभ्यास से बड़े विस्तार को पावेगा। हृदय में जो वैराग्य पूर्वक विचार उपजता है तो वह बढ़ता जाता है और अविद्या रूपी अवगुणों को काट डालेगा और सब शुभ गुण आन उसमें आलय करेंगे। जैसे जल से पूर्ण हुए ताल का सब पक्षी आन आश्रय करते हैं। हे रामचंद्र जी, जिसको सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है और निर्मल बोध से यथार्थ दर्शन होता है उसको इंद्रियां चला नहीं सकती। जब तक स्वरूप का प्रमाद होता है तब तक आधे व्याधि दुख होते हैं और जब स्वरूप में स्थिति होती है तब शरीर और मन के दुख वश नहीं कर सकते। जैसे बिजली को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, तैसे पुष्टिकर मेघों को कोई पकड़ नहीं सकता, जैसे आकाश के चंद्रमा को कोई मुष्टि में नहीं पकड़ सकता और मूढ़ स्त्री चंद्रमा को मोह नहीं सकती, तैसे ही ज्ञानवान को कोई दुख वश नहीं कर सकता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण चतुर्थ स्थिति प्रकरण प्रारंभ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अब स्थिति प्रकरण सुनिए। जिसके सुनने से जगत निर्वाणता को प्राप्त हो। कैसा जगत है कि जिसके आदि अहंता है, ऐसा जो दृश्य रूप जगत है सो भ्रांति मात्र है। जैसे आकाश में नाना प्रकार के रंगों सहित इंद्रधनुष असतरूप है तैसे यह जगत है। जैसे दृष्टा बिना अनुभव होता है और निद्रा बिना स्वप्न और भविष्यत नगर भासता है, तैसे ही भ्रम से चित्त में जगत स्थित हुआ है। जैसे वानर रेत इकट्ठी करके अग्नि की कल्पना करते हैं पर उससे शीत निवृत्त नहीं होती, भावना मात्र अग्नि होती है, तैसे यह जगत भावना मात्र है। जैसे आकाश में रत्नमणि का प्रकाश और गंधर्व नगर भासता है और जैसे मृग तृष्णा की नदी भासती है, तैसे ही यह असतरूप जगत भ्रम से सतरूप होकर भासता है। जैसे दृढ़ अनुभव से संकल्प भासता है पर वह असतरूप है और जैसे कथा के अर्थ चित्त में भासते हैं, तैसे ही निस्सार रूप जगत चित्त में सार रूप हो भासता है। जैसे स्वप्न में पहाड़ और नदियां भासाती हैं, तैसे ही सब भूत बड़े भी भासते हैं पर आकाशवत शून्य रूप है। स्वप्न में अंगना से प्रेम करना अर्थ से रहित और असत रूप है, सिद्ध नहीं होता, तैसे ही यह भी प्रत्यक्ष भासता है परंतु वास्तव में कुछ नहीं, अर्थ से रहित है। जैसे चित्र की लिखी कमलिनी सुगंध से रहित होती है, तैसे ही यह जगत शून्य रूप है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष और केले का थंब सुंदर भासता है परंतु उसमें कुछ सार नहीं निकलता, तैसे ही यह जगत देखने में रमणीय भासता है परंतु अत्यंत असत्य रूप है, इसमें सार कुछ नहीं निकलता। देखने में प्रत्यक्ष अनुभव होता है परंतु मृग तृष्णा की नदीवत असत रूप है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, हे सर्वसंशयों के नाश करता, जब महाकल्प क्षय होता है तब दृश्यमान सब जगत आत्मरूप बीज में लीन होता है। जैसे बीज में अंकुर रहता है, उससे उपजा है, उसी में स्थित होता है और फिर उसी में लीन होता है। यह बुद्धि ज्ञान की है अथवा अज्ञान की है? सर्व संशयों की निवृत्ति के अर्थ मुझसे स्पष्ट करके कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार महाकल्प के क्षय होने पर बीज रूप आत्मा में जगत स्थित होता है। जो ऐसे कहते हैं वह परम अज्ञानी और महामूर्ख बालक है। जो ब्रह्म को जगत का कारण बीज से अंकुर की नाई कहते हैं वह मूर्ख है। बीज तो दृश्य रूप इंद्रियों का विषय होता है। जैसे वट बीज से अंकुर होता है और फिर विस्तार पाता है, सो इंद्रियों का विषय है। और जो मन सहित क्षण इंद्रियों से अतीत है, अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं, आकाश से भी अधिक निर्मल है, उसको जगत का बीज कैसे कहिए? जो आकाश से भी अधिक सूक्ष्म, परम उत्तम अनुभव से उपलब्ध और नित्य प्राप्त है, उसको बीज भाव कहना नहीं बनता। हे रामचंद्र जी, जो कि शांत सूक्ष्म सदा प्रकाश सत्ता है और जिसमें दृश्य जगत असत रूप है, उसको बीज रूप कैसे कहिए? और जब बीज रूप कहना नहीं बनता, तब उसे जगत कैसे कहिए? आकाश से भी अधिक सूक्ष्म निर्मल परम पद में सुमेरु समुद्र आकाश अधिक जगत नहीं बनता। जो किंचन और अकिंचन है और निराकार सूक्ष्म सत्ता है, उसमें विद्यमान जगत कैसे हो? वह महासूक्ष्म रूप है और दृश्य उससे विरुद्ध रूप है। जैसे धूप में छाया नहीं, जैसे सूर्य में अंधकार नहीं, जैसे अग्नि में बर्फ नहीं और जैसे अणु में सुमेरु नहीं होता, तैसे ही आत्मा में जगत नहीं होता। सत्य रूप आत्मा में असत्य रूप जगत कैसे हो? वट का बीज साकार रूप होता है और निराकार रूप आत्मा में साकार रूप जगत होना अयुक्त है। हे रामचंद्र जी, कारण दो प्रकार का होता है, एक समवायिक कारण और दूसरा निमित्त कारण। आत्मा दोनों कारणों से रहित है। निमित्त कारण तब होता है जब कार्य से कर्ता भिन्न हो, पर आत्मा तो अद्वैत है, उसके निकट दूसरी वस्तु नहीं है। वह कर्ता कैसे हो और किसका हो? सहकारी भी नहीं जिससे कार्य करे। वह तो मन और इंद्रियों से रहित निराकार अविकृत रूप है और समवायिक कारण भी परिणाम से होता है। जैसे वट बीज परिणाम से वृक्ष होता है, पर आत्मा तो अच्युत रूप है, परिणाम को कदाचित नहीं प्राप्त होता, तो समवायिक कारण कैसे हो? जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते क्षीयते नश्यति, इन षट विकारों से रहित निर्विकार आत्मा जगत का कारण कैसे हो? इसे यह जगत अकारण रूप भ्रांति से भासता है। जैसे आकाश में नीलता, सीप में रूपा, निद्रा दोष से स्वप्न दृष्टि भासते हैं, तैसे यह जगत भ्रांति से भासता है। और जब स्वरूप में जागे तब जगत भ्रम मिट जाता है। इससे कारण कार्य भ्रम को त्याग कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। दुर्बोध से संकल्प रचना हुई है, उसका त्याग करो और आदि मध्य और अंत से रहित जो सत्ता है उसी में स्थित हो, तब जगत भ्रम मिट जाएगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे देवताओं में श्रेष्ठ राम जी, बीज से अंकुरवत आत्मा से जगत का होना अंगीकार कीजिए तो भी नहीं बनता, क्योंकि आत्मा सर्व कल्पनाओं से रहित महाचैतन्य और निर्मल आकाशवत है, उसको जगत का बीज कैसे मानिए? बीज के परिणाम में अंकुर होता है और कारण समवायों से होता है। आत्मा में समवाय और निमित्त सहकारी कदाचित नहीं बनते। जैसे वंध्या स्त्री की संतान किसी ने नहीं देखी, तैसे ही आत्मा से जगत नहीं होता। जो समवायक और निमित्त कारण बिना पदार्थ भासे है, तो जानिए कि यह है नहीं, भ्रांति मात्र भासता है। आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और सृष्टि स्थित प्रलय से ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जो इस प्रकार स्थिति है तो कारण कार्य का कर्म कैसे हो, और जो कारण भाव न हुआ तो पृथ्वी आदि भूत कहां से उपजे? और जो कारण कार्य मानिए तो पूर्व जो विकार कहे हैं उनका दूषण आता है, इसे न कोई कारण है और न कार्य है। कारण कार्य बिना जो पदार्थ भासे उसको सत्रूप जाने, वह मूर्ख बालक और विवेक से रहित है जो उसे कार्य कारण मानता है। इसे यह जगत न आगे था न अब है और न पीछे होगा। स्वच्छ चिदाकाश सत्ता अपने आप में स्थित है। जब जगत का अत्यंत अभाव होता है तब संपूर्ण ब्रह्म ही दृष्टि आता है। जैसे समुद्र में तरंग भासते हैं, तैसे ही आत्मा में जगत भासता है। अन्यथा कारण कार्य भाव कोई नहीं, और न प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अन्योन्य भाव ही है। प्राग भाव उसे कहते हैं कि जो प्रथम न हो। जैसे प्रथम पुत्र नहीं होता और पीछे उत्पन्न होता है, और जैसे मृत्तिका से घट उत्पन्न होता है। प्रध्वंसा भाव यह है जो प्रथम होकर नष्ट हो जाता है, जैसे घट था और नष्ट हो गया। अन्योन्य भाव वह है जिसे घट में पट का अभाव है और पट में घट का अभाव है। ये तीन प्रकार के अभाव जिसके हृदय में है उसको जगत दृढ़ होता है और उसको शांति नहीं होती। जब जगत का अत्यंत भाव दिखता है तब चित्त शांतिमान होता है। जगत के अत्यंत अभाव के सिवाय और कोई उपाय नहीं, और अशेष जगत की निवृत्ति बिना मुक्ति नहीं। सूर्य आदि लेकर जो कुछ प्रकाश पृथ्वी आदि तत्व क्षण वर्ष कल्प आदि काल और मैं यह रूप अवलोक मनस्कार इत्यादि जगत सब संकल्प मात्र है, और कल्प कल्पक ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र से कीट आदि पर्यंत जो कुछ जगत जाल है वह उपज उपज कर अंतर्धान हो जाता है। महाचैतन्य परम आकाश में अनंत वृत्ति उठती है। जैसे जगत के पूर्व शांत सत्ता थी, तैसे ही तुम अब भी जानो और कुछ नहीं हुआ। परमाणु के सहस्त्रांश की नई सूक्ष्म चित्त कला है। उस चित्त कला में अनंत कोटि सृष्टियां स्थित है। वही चित्त सत्ता फूरने से जगत रूप होकर भासती है और प्रकाश रूप और निराकार शांत रूप है। न उदय होता है, न अस्त होता है, न आता है और न जाता है। जैसे शिला में रेखा होती है, तैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे आकाश में आकाश सत्ता फुरती है, तैसे ही आत्मा में जगत फुरता है और आत्मा ही में स्थित है। निराकार निर्विकार रूप विज्ञान घन सत्ता अपने आप में स्थित और उदय और अस्त से रहित विस्तृत रूप है। हे रामचंद्र जी, जो सहकारी कारण कोई न हुआ तो जगत शून्य हुआ, ऐसा जानने से सर्व कलंक कलना शांत हो जाती है। हे रामचंद्र जी, तुम दीर्घ निद्रा में सोए हो, उस निद्रा का अभाव करके ज्ञान भूमिका को प्राप्त हो जाओ, जाके से निशोक पद प्राप्त होगा। राम जी ने पूछा, हे भगवान, महाप्रलय के अंत और सृष्टि के आदि में जो प्रजापति होता है, वह जगत को पूर्व की स्मृति से उसी भांति रचता है, तो ये जगत स्मृति रूप क्यों न होवे? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, महाप्रलय के आदि में प्रजापति स्मरण करके पूर्व किनाई जगत रचता है। जो ऐसे मानिए तो नहीं बनता, क्योंकि महाप्रलय में प्रजापति कहाँ रहता? जो आप ही न रहे उसकी स्मृति कैसे मानिए? जैसे आकाश में वृक्ष नहीं होता, तैसे ही महाप्रलय में प्रजापति नहीं होता। राम जी ने पूछा, हे ब्रह्मण्य, जगत के आदि में जो ब्रह्मा था उसने जगत रचा, महाप्रलय में उसकी स्मृति का नाश तो नहीं होता? वह तो फिर स्मृति से जगत रचता है, आप कैसे कहते हैं कि नहीं बनता? वशिष्ठ जी बोले, हे शुभ्रव्रत राम जी, महाप्रलय के पूर्व जो ब्रह्मादिक होते हैं, वह महाप्रलय में सब निर्वाण हो जाते हैं, अर्थात विदेह मुक्त होते हैं। जो स्मृति करने वाले अंतर्धान हो गए तो स्मृति कहाँ रही? और जो स्मृति निर्मूल हुई तो उसको जगत का कारण कैसे कहिए? महाप्रलय उसका नाम है जहां सर्व शब्द अर्थ सहित निर्मूल हो जाते हैं। जहां सब अंतर्धान हो गए तहां स्मृति किसकी कहिए? और जो स्मृति का अभाव हुआ तो कारण किसका किसकी नहीं कहिए? इसे सर्व जगत चित्त के फूरने मात्र से है। जब महाप्रलय होता है तब सब यत्न बिना ही मोक्ष भागी होते हैं, और जो आत्मज्ञान हो तो जगत के होते भी मोक्ष भागी होते हैं। पर जो आत्मज्ञान नहीं होता तो जगत दृढ़ होता है, निवृत्त नहीं होता। जब दृश्य जगत का अभाव होता है तब स्वच्छ चैतन्य सत्ता जो आदि अंत से रहित है प्रकाशती है, और सब जगत भी वही रूप भासता है। सर्व में अनादि सिद्ध ब्रह्म तत्व प्रकाशित है, उसमें जो आदि संवेदन फुरता है वह ब्रह्म रूप है, और अंतवाहक देह विराट जगत हो भासता है। उसका एक प्रमाण रूप यह तीनों जगत है, उसमें देश काल क्रिया द्रव्य दिन रात्रि क्रम हुआ है। उसके अणु में जो जगत फुरते हैं सो क्या है? सब संकल्प रूप है और ब्रह्म सत्ता का प्रकाश है। जो प्रबुद्ध आत्मज्ञानी है उसको सब जगत एक ब्रह्म रूप ही भासता है, और जो अज्ञानी है उसके चित्त में अनेक प्रकार जगत की भावना होती है, द्वैत भावना से यह भ्रमता है। जैसे ब्रह्मांड के अनेक परमाणु होते हैं, उनके भीतर अनंत सृष्टिया है और उनके अंतर और अनंत सृष्टि है, तैसे ही और जो अनंत सृष्टि है उनके अंतर और अनंत सृष्टिया फुरती है, सो ब्रह्म तत्व का ही प्रकाश है। ब्रह्म रूपी महासुमेरु है, उसके भीतर अनेक जगत रूपी परमाणु हैं, सो सब अभिन्न रूप है। हे राम जी, सूर्य के किरणों के समूह में जो सूक्ष्म त्रिश्रेणु होते हैं उनकी संख्या कदाचित कोई कर भी सके, परंतु आदि अंत से रहित जो आत्मा रूपी सूर्य है उसकी त्रिलोकी रूपी किरणों की संख्या कोई नहीं कर सकता। जैसे समुद्र में जल और पृथ्वी में धूलि के असंख्य परमाणु हैं, तैसे ही आत्मा में असंख्य परमाणु रूप सृष्टिया है। जैसे आकाश शून्य रूप है, तैसे ही आत्मा चिदाकाश जगत रूप है। यह जो मैंने उसकी सृष्टि कही है, जो इनको तुम जगत शब्द से जानोगे तो अज्ञान बुद्धि और दुख और भ्रम देखोगे, जो इनको ब्रह्म शब्द का अर्थ जानोगे तो इस बुद्धि से परम सार को प्राप्त होंगे। सर्व विश्व ब्रह्म से फुरता है और विज्ञान ग्रहण ब्रह्म रूप ही है, द्वैत नहीं, तब जानोगे जब तुमको ऐसे ही भासित होगा। हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।